ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਹਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯੇ ਮਾਨ ਕੇ ਚਲਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਯੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋਂ ਸੇ ਯਾ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਸੇ ਹਮ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਕੋ ਊੰਚਾ ਉਠਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੋਂ ਕੋ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਲਾਭ ਤੋ ਲੇ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਯਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਸਮਾਵਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਤਬ ਤੱਕ ਵੇ ਉਧਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਯਾ ਉਧਾਰ ਕਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹਮਾਰੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ये एक बार हमें तय कर लेना चाहिए, अपने अनुभव से भी देख लेना चाहिए। श्रेष्ठ विचार तो ये है कि हम अपने जीवन की जो वास्तविकता है उसे समझें। अगर हमने अपने जीवन की वास्तविकता समझ ली है तो हम उसे स्वीकार करें। स्वीकृति बहुत कठिन, समझना स्वीकृति से आसान है। हमने समझ लिया कि आग जलाती है, हो गया, समझने में इसमें क्या देर लगनी है, किसी ने कह दिया और हमने कहा कि हाँ ठीक है। लेकिन इसे स्वीकार करना, हाँ भाई हम स्वीकार भी कर लेते हैं कि आग जलाती है, तो अब आग में हाथ मत डालना, नहीं लेकिन हम डालेंगे, इसका मतलब है कि आपने अभी हमारी बात मानी नहीं। कितने आसानी से हम समझ सकते हैं, हम समझ तो सब चीजें लेते हैं लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जैसी हैं वैसी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हम जैसी चाहते हैं वैसी स्वीकार तो कर लेते हैं। और जीवन की अगर श्रेष्ठताओं को हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो बिना स्वीकृति के नहीं होती, टोटल एक्सेप्टेशन, पूरी तरह से हमने स्वीकार कर लिया। किसी व्यक्ति को स्वीकार कर लीजिएगा या किसी विचार को स्वीकार कर लीजिएगा, फिर देखिएगा क्या जीवन में परिवर्तन होना शुरू होता है। जिन जिन चीजों को हमने स्वीकार कर लिया है वे सब चीजें हमारे जीवन में जज्ब हो गई। जैसे कोई कहे कि शरीर तो एक दिन मर जाएगा, अच्छी बात, लेकिन हमने सुना जरूर है, हमने माना कभी नहीं है कि मर जाएगा। अगर मर जाएगा तो फिर इतनी सेवा किसकी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर कोई चीज है कि हाँ कह तो जरूर रहे हैं लेकिन हमारा अनुभव तो ये है कि कितना सुंदर तो औरत होता जा रहा, रोज रोज हम कितना उसको वो वाली साबुन लेके आए थे उससे देखो कितना फर्स्ट क्लास हो गया। और कहने दो इनको, ये कहते हैं ऐसे ही लोग। हम बहुत सारे तरीकों से और अपने जीवन को परिष्कृत करना चाहते हैं लेकिन वे सारे बाह्य जितने भी तरीके हैं वे कभी हमारे काम नहीं आए, पर हम इस चीज को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। कितनी बार सुंदर बनने के लिए कितने प्रकार के आभूषण और कितने प्रकार के वस्त्र हमने बदले लेकिन एक भी बार अंतरात्मा से कभी आवाज आई कि हाँ अब तुम सचमुच सुंदर हो गए। अब इसमें देर क्या है, मैं ये नहीं समझ पाता, और जब भी समझने की कोशिश करता हूं तो यही लगता है कि हमारे अंदर स्वीकृति नहीं। बातें सब हैं लेकिन स्वीकृति, आज हम यहां से शुरू करते हैं कि जितने भी विचार हम दूसरे से सुनते हैं या अपने जीवन में करते हैं अपने जीवन के बाबत, अब हम उनको स्वीकार करना शुरू करें और फिर देखें कि हमारे जीवन में परिवर्तन आता क्यों। एक बहुत छोटी सी हर एक के जीवन में घटना घटती है, मेरा ऐसा मानना है। बचपन में क्या होता था कि सुबह से नींद नहीं खुल पाती थी और एग्जामिनेशन का टाइम है तो क्या करते थे, शाम को माँ को कह के सोते थे कि देखो सुबह जगा लें और सुबह तो परीक्षा है और जरा जल्दी जगा लें। और फिर सोते सोते एक बार फिर से कहते थे कि देखो माँ और तुम भूल मत जा, तुम भूल जाओगे तो बहुत गड़बड़ होगी, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम नहीं भूलोगे, फिर भी मैं कह देता हूं कि भूल ना मत। और एक बात और है माँ, हो सकता है सुबह सुबह जब तुम नींद से मुझे जगाओ तो हो सकता है कि मैं इनकार कर दूं, हो सकता है कि मैं तुम्हें गाली भी दे दूं, हो सकता है मेरा पैर भी जो है और उठ जाए, संभव है, पर तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत देना, मुझे जगा दे। और सुबह सुबह वही चीज दोहराई जाती है, माँ जगाती है, हम इनकार करते हैं, जबकि शाम हम खुद कह के सोए हैं कि अगर इनकार भी करें तब भी जगा लेना, और माँ तो जबरदस्ती जगा लेती है। माँ हमको इस तरह की मिले तब ना, और हम वैसी माँ को स्वीकार कर पाए तब ना, अपने जीवन को उठाने वाली, ये तो बहुत छोटी सी, ये माँ तो मिल जाती है जन्म देते ही साथ मिल जाती है, लेकिन ऐसी वाली माँ कि जब हम अपने जीवन में और अपने ही विचारों को स्वीकार ना कर पाए तब वो हमें स्वीकार करा दे, यहीं से शुरुआत होती है धर्म की, इसी का नाम है श्रद्धा, इसी का नाम है समर्पण, कि हमसे नहीं होता, हमें मालूम पड़ गया है कि विचार हमारे पास हैं, हमसे स्वीकृति नहीं होती है, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, सब जानबूझ करके अंध बने हुए हैं, तो कोई हो जो कि हमें थाम ले, कोई हो जो कि हमें रास्ते पर सहारा दे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आज तीर्थंकर की हैसियत का तो कोई नहीं है कि जो बिना किसी की मदद के और मोक्ष मार्ग पर चल दे, हम सब लोग क्यों नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हमारे पास विचार हैं, स्वीकृति नहीं है, स्वीकृति नहीं है तो अब किसी का सहारा चाहिए, और वो सहारा भी आज हम ढूंढ नहीं पा रहे। मुझे बताइए किसके जीवन में किसी ने किसी को अपने लिए मोक्ष मार्ग पर चलने का सहारा बनाया, कहीं भीतर आपने उसके लिए जगह दी कि जब कभी मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना होगा तो किसी चरणों में जाकर के बैठ जाऊंगा कि मेरे से तो होता नहीं, आप ही बताइएगा कि कैसा करें। ये चीज हमारे जीवन से धीरे धीरे गायब होती चली जा रही, ऐसा लगता है कि दूसरे की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, क्या हमारी क्षमता नहीं है, नहीं, श्रद्धा या विश्वास हमें अधीन नहीं बनाता, श्रद्धा और विश्वास तो हमारी बहुत सारी अधीनताओं को खत्म कर देता है। हम जितने अपने पांचों इंद्रियों और मन के अधीन हैं, वो सारी अधीनता हमारी श्रद्धा अगर एक बार उत्पन्न हो जाए तो खत्म हो जाए। हम बहुत कोशिश करते हैं कि इंद्रियों और मन की ग्रिप से हम बच जाएं, लेकिन नहीं बच पाते हैं। आप कोशिश करके और देख लीजिएगा, अगर आपके भीतर श्रद्धा नहीं, आपके भीतर विश्वास नहीं, आपके भीतर समर्पण नहीं, आज मैं कहता हूँ समर्पण, श्रद्धा एक बार हो भी जाती है, हम चार बातें सुन लेते हैं, किसी की मान भी लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों के प्रति डिवोट नहीं हो पाते, हम समर्पित नहीं हो पाते हैं कि ठीक है आपने कहा इसलिए हमने मान लिया। हमारे भीतर कोई लॉज नहीं है, कोई तर्क नहीं है उस चीज़ को लेकर। पहले इसलिए सुख शांति बरसती थी, व्यक्ति ज़्यादा तर्क नहीं करता था, आज पैदा हुआ बेटा भी शायद ये तर्क करेगा कि साबित करो कि तुम ही मेरी माँ, हो सकता है ऐसा कोई समय आए बड़ा होने के बाद वो पूछे, अभी तो कम से कम इतना चल रहा है, इतने विश्वास के साथ चल रहे हैं कि जिसे देखा भी नहीं है उसे माँ स्वीकार कर लिया, उसे पिता स्वीकार कर लिया है, कोई समय ऐसा ना आए जबकि हम शायद अपने माँ और पिता पर विश्वास ना कर पाए, नहीं करते हैं, बात को नहीं करते हैं, भले ही इस बात से कर लें लेकिन ये मेरे हितैषी हैं, ये मुझे जो बात कहेंगे वो बात मेरे हित की है, ऐसा हम स्वीकार नहीं करते, फिर और किसकी बात करें, फिर भगवान पर विश्वास करना और उनके प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देना, ये तो बहुत असल में अहंकार सबसे ज्यादा बाधा है। समर्पण में अगर कोई बाधक है तो हमारा अहंकार है। और हम बाकी सब की अधीनता स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जो हमें मोक्ष मार्ग बताए उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। उसे हम मान तो लेते हैं, उसे हम समझ तो लेते हैं, पर हम अपने जीवन को सौंप नहीं पाते। ये हमारी कमी है। कोशिश करिएगा कि ये कमी हमारी दूर हो। मैं एक बहुत छोटी सी घटना आपसे कहूँ। एक बॉटनिस्ट और एक खोज करता है, कोई उसको स्पीसीज मिल जाती है और बहुत रेयर स्पीसीज है, और वो लेकिन 400 फीट नीचे खाई में है। कैसे निकालें? वैसा कोई सिस्टम तो उस समय इजाद नहीं हुआ था कि सीधा हम नीचे चले जाएं और लेकर के आ जाएं। उसने अपने बेटे से कहा कि आओ हम एक ठो बहुत बढ़िया सी फूल की कलम लेकर के आने वाले हैं, ऐसा रेयर है वो फूल, कभी किसी ने देखा नहीं। उसके बेटे ने कहा चलो तैयार, और ले जाकर के कहा कि वहां नीचे है वो। उसने कहा मुझे क्या करना है? बेटे ने ये नहीं कहा कि अपने को डर लगता है, उसने कहा कि मुझे क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारे कमर से रस्सी बांधे देता हूं और धीरे धीरे नीचे छोड़ता जाऊंगा, तुम चले जाना और वहां से तोड़ करके ले आना, डोंट फियर। उसने कहा इसमें क्या, अभी लेकर के आता हूं। और रस्सी बांधी और धीरे धीरे वो पिता उसको नीचे छोड़ता चला जाता है। वो खुश है और चुपचाप नीचे चला जा रहा है। वहां से उसने वो पत्ती जो उसने बताई थी डाल, वो तोड़ी है और ऊपर बहुत खुश होकर के एडवेंचर जैसे कि उसने कोई चीज बहुत बड़ी पाली है, और खुश होकर के पिता खींच रहा है। लेकिन पिता पसीने पसीने हैं, पिता का हृदय जो है वो धड़क रहा है, बहुत तेजी से धड़क रहा है, बहुत भयभीत है, जबकि वो कह रहा है कि डोंट फियर, अपने बेटे को कह रहा है कि डरना मत, और खुद डर रहा है। और जब बेटा ऊपर आया और पिता को इतना मुश्किल में पड़े देखा, तो उसने पूछा क्या आप इतने घबराए से इतने मुश्किल में पड़े क्यों मालूम पड़ते हैं? तो पिता ने कहा कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम इतने खुश और इतने आनंदित कैसे हो? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा उतने नीचे जाने पर? मुझे तो यहां से डर लग रहा था। उसने कहा डरने की क्या बात, इसमें डरने की क्या बात, रस्सी तो आपके हाथ में थी और आप मेरे पिता हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। लेकिन हमारे जीवन में इतना समर्पण नहीं है कि ये हमारे भगवान हैं, रस्सी इनके हाथ में है, ये हमारी जिनवाणी है, रस्सी इसके हाथ में है, ये हमारे महाराज हैं, रस्सी इनके हाथ में है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं होने वाला, इतना समर्पण है। और हम चाहते हैं कि सारी जिंदगी आसान हो जाए, भैया ऐसे आसान नहीं होती। आसान तो उस बेटी की हो गई थी जो निश्चिंत होकर ठाट से सोया था, सब कुछ कह करके कि सुबह जगा लेना माँ से, उसकी आसान हो गई। कैसे आसान हो गई थी? श्रद्धा से आसान हो गई थी, विश्वास और समर्पण से आसान हो गई थी। अगर वो मां से ये कहता कि जगाना हो तो जगा लेना, हमें जितने बजे उठना होगा उठ जाएंगे, हमें मालूम है परीक्षा देना है, ऐसा भी कह के सो सकता था कि तुम जगाना वगाना मत, मैं अपने आप उठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा ऐसा कह के वो निश्चिंत नहीं हो सकता था। इतने हम अपने उपादान की योग्यता को लेके पैदा होने वाले लोग नहीं है, तीर्थंकर की तरह हम कमजोर लोग हैं, हमें चाहिए सहारा चाहिए। लेकिन आज मुश्किल यह है कि हम सहारा पा ही नहीं रहे हैं, या तो हम ये कह रहे हैं कि सहारा कोई देता ही नहीं है, हम ये नहीं मान पा रहे हैं कि हमने किसी से सहारे की अपेक्षा नहीं की, हम हाथ बढ़ाएं और कोई ना थामे, ऐसा आज नहीं है। पर शुरुआत हमें करना पड़ेगी, और ये शुरुआत जिस दिन भी आप करें उस दिन आपके जीवन में धर्म की शुरुआत होगी। बिना समर्पित हुए, बिना श्रद्धा के कोई चीज नहीं आती, और एक बार अगर श्रद्धा आ गई तो कितनी सारी चीजें आती हैं। कभी आपने सोचा? सबसे पहली चीज निश्चिंतता आती है, कोई संदेह नहीं रहता अपने जीवन के बारे में। जैसे हमारा मित्र हो और उसके बारे में कोई कुछ कहे
गलत बात भी कहें और अगर उस पर आपका विश्वास है आप क्या कहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। पहली बात होगी, अगर आपका विश्वास है तो सबसे पहले कहेंगे कि हो नहीं सकता, और आपका अविश्वास है तो आप कहेंगे वो तो हम पहले से मालूम है, तो तुम कौन नई बातें कह रहे हो, वो तो नहीं ऐसे जन्म के हैं। उनकी आदत नहीं जात बतो है उनकी। एक बार व्यक्ति के मन में अगर यह अविश्वास आ गया तो फिर आप चाहे जितने अच्छे हो जाइएगा लेकिन व्यक्ति आप पर विश्वास ही करेगा। और एक बार विश्वास आ जाए आप कितने गलत हो जाइए विश्वास के माध्यम से वो अपने को ठीक कर लेगा। संदेह नहीं उपजता है। भगवान ने के प्रति समर्पण के बाद सबसे बड़ी चीज आती है कि जो भगवान ने कहा है सो ही सच्चा है। मैं दुनिया की सब चीजों को सच्चा मानता रहता हूं और भगवान की कहीं सच्ची नहीं मानता हूं, यह मेरी कमी है। निस्संदेह हो जाते हैं। और हमारे संदेह तो देखो, कभी सोचा आपने कि संदेह किस तरह के हैं? जैसे कि एक आदमी को जिसके पास पॉकेट में कुछ ना हो और कोई रास्ता बताए और जंगल का बता दे दे और वो शिकायत करता है कि देखो कैसे रास्ते भेज दिया, मैं लूट जाऊंगा। अच्छा तो है क्या तुम्हारे पास लूटने लायक जो कह रहा है कि मैं लूट जाऊंगा, ऐसे गलत रास्ते बता दिया मुझे। ऐसे संदेह हमारे हैं, छोटी छोटी चीजें जिनको कि एक दिन हमसे छूट जाने हैं, उन चीजों को लेकर के हम डाउट क्रिएट करते हैं। हम संदेह में पड़ जाते हैं कि ये छिन ना जाए। हमारी अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो निरंतर छिनती चली जा रही है, उसके प्रति कोई संदेह नहीं है। हम मोक्ष मार्ग पर चलेंगे ठीक है, हम इतना नियम संयम पालन करेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको इतना विश्वास नहीं है तो मत करिएगा, इसमें क्या बात है। और अगर आपका विश्वास है तो आपके भीतर ये संदेह हो गई। तो पहली चीज श्रद्धा से ये होती है कि हम निश्चिंत होकर के और अपने मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं। हम संसार में भी बहुत निश्चिंत हो जाते हैं, न मरण का भय है, न इस लोक का, न परलोक का, न आकस्मिक भय, न प्राण, न आवृत्ति, न वेदना, कोई भय शेष नहीं रह जाता। अगर एक बार हमारे जीवन में कहीं हम समर्पित हो जाए, जैसे कि कभी आपने महसूस किया हो चाहे नहीं किया हो, हमने तो कई बार महसूस किया कि जब कोई व्यक्ति हमको कुछ कह देता था घर में भी, तो हम क्या मन में सोच करके चुप रह जाते थे कि हम इसके बारे में जाकर के मां से कहेंगे कि ये हमसे ऐसा कहता है, और हमें इससे डरने की कोई बात नहीं, हम मां से कह देंगे सब ठीक हो जाए। और इसी तरह अगर मोक्ष मार्ग में हम लगाएं कि हम दो जो हो रहा है कोई है हमारा जिसके पास जाके हम सब बातें कह देंगे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, ऐसा ऐसा हमारे जीवन में घटित हुआ, हमें डरने की कोई बात नहीं, कितनी निश्चिंतता हो जाती है। अभी भी वो नीरज जी आते हैं सपना वाले, वो कहते हैं कि जब मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मेरे मन में फौरन वर्णी जी की याद आती है कि वर्णी जी होते तो क्या कहते, वर्णी जी कहते कि काय नीरज तुमने ऐसा करो, तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। अगर किसी के प्रति हम समर्पित हैं तो वो हमें बचा देता है, वो हमें निश्चिंतता देता है, वो हमें पाप में जाने से भी रोक देता है, हमारा हाथ पकड़ देता है। आज यदि हम अपने जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते हैं और पाप में चले जाते हैं तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अपनी जिम्मेदारी किसी के चरणों में रख करके देख लीजिएगा कि अब मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने रख दिया किन्हीं चरणों में, वो जिम्मेदार है, मेरे से जो हो पाएगा वो होगा। इतनी निश्चिंतता हम ला सकते हैं, आज भी ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आकांक्षाएं खत्म हो जाती हैं जो हम किसी के प्रति विश्वास कर लेते हैं। मैं चीजें समझा तो रहा हूं आपको लेकिन मन ही मन मेरे मालूम कैसा लग रहा है कि पता नहीं आप इनको सही मानेंगे कि नहीं। देखो तो कैसा हमारा रिश्ता है, विश्वास एकदम नहीं बैठता, जल्दी से नहीं बैठता कि क्या पता आप सोचेंगे कि हाँ ये सब चीजें होती होंगी। पर मैं साथ साथ ये भी मान के चल रहा हूं कि नहीं आप मेरी बात पर अनुभव पर विश्वास मानेंगे। कोई आकांक्षा पेश नहीं रह जाती भैया, किसी व्यक्ति के प्रति अपने को समर्पित कर दो फिर वही शेष रह जाता है, दुनिया तो सब खो जाती है। एक बार करके देख लो आप, आपने ऐसा संसार के मामले में किया होगा जिसके प्रति आपका बहुत प्रेम होगा, आपको पूरे दिन भर उसके अलावा कोई नहीं दिखता होगा, दुनिया फीकी मालूम पड़ती होगी, ऐसा अनुभव आपका कई बार होगा। और ऐसा अगर परमात्मा से हो जावे तो दुनिया फीकी मालूम पड़ने लगेगी, कि का भरो में सही वीतरागता का सौंदर्य तो वो है, इस बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं। ज्यादा कठिन नहीं है, ऐसी आकांक्षाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जब कोई बड़ा सुख मिल रहा हो तो छोटे छोटे सुख तो आदमी अपने आप छोड़ देता है, लेकिन बड़े सुख का भरोसा और विश्वास होना, मुझे मोक्ष का सुख मिलेगा, उन चरणों में बैठूंगा तो मोक्ष का सुख मिलेगा, मुझे वो जाकर के टेलीविजन का सुख, वो ज्यादा सुख नहीं है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप टेलीविजन मत देखिएगा, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आप कहीं विश्वास तो कर लीजिए, उसके पास घंटे भर बैठी है, आपका टेलीविजन घंटे भर को तो छूट ही गया, और घर भी जाएंगे तो वही चर्चा आएगी कि कहां पढ़ो तो अपन ने और कहां सीख के आए थे। अगर इतना आपके भीतर विश्वास है तो, और एक बार विश्वास हो जाता है तो फिर वो विश्वास हमें बहुत सारे लोगों से घृणा से बचा लेता है, और मोक्ष मार्गी के प्रति तो हमारी घृणा हो ही नहीं पाती है, जिसको अपन निर्विचिकित्सा बोलते हैं। एक बार अगर सच्चाई के प्रति विश्वास हो जाए तो फिर क्या कोई घृणा कर सकता है सच्चाई से? जिस व्यक्ति से हमारी आत्मीयता है उस व्यक्ति के प्रति आप घृणा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। उस व्यक्ति के अलावा किसी और को चाह सकते हैं? जैसे आपका सत्य से स्नेह हो जाए तो आप सत्य के प्रति पूरी तरह से डिवोट हैं, आप कभी असत्य को चाहेंगे? असत्य के रास्ते पर चलेंगे? चौराहे पर खड़े हैं, जाना है अपने को जहां वो रास्ता इस तरफ जाता है, कोई कहे कि इधर का रास्ता बहुत सुंदर है, आप कहेंगे रखे रहो, सोना भी बिछाओ उस रास्ते पर, तब मुझे तो जाना इस तरफ है। एक बार अगर हमने अपना मार्ग तय कर लिया पूरे विश्वास के साथ किसी के कदमों में, फिर सैकड़ों रास्ते पर चलाने वाले लोग मिल जाएंगे, हम नहीं कहेंगे। अभी हम लोग बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे और उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, कि मैं मान लीजिए धर्म करना शुरू करता हूं तो चार लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी मत करो, इतनी जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में करोगे तो ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए सब। तो मैं सोच में पड़ गया कि जिन्हें विश्वास नहीं है उनकी भाषा ही ये होगी, और जिसे विश्वास है उसकी भाषा ये नहीं होगी, वो कहेगा मैंने जो चुना है वो मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से चुना है, और अब मुझे इसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं आने वाली, और अगर मुश्किल आएगी भी तो वो तो दूसरे मार्ग पर भी आ सकती है, अगर आनी होगी मुश्किल तो। क्या कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चलने वाला ही अस्वस्थ हो सकता है? क्या संसार मार्ग पर जाने वाला कोई अस्वस्थ नहीं हो सकता? मैं ये सोचकर कि मोक्ष मार्ग पर चलूंगा तो मेरे ऊपर विपत्ति ना जाए, मेरा शरीर गड़बड़ा ना जाए, भैया मन ना गड़बड़ाए तो सब ठीक है। और मन तो हमने अपना किसी के चरणों में डाल दिया है, अब गड़बड़ाने जैसी कोई चीज नहीं है। मन गड़बड़ाता है जबकि हम उसको अपने अनुसार चलने देते हैं, और हमने अब मन को अपने अनुसार चलने से तो इनकार कर दिया है, मोक्ष मार्गी जो है उनके चरणों में डाल दिया है। कभी आपने भगवान से ऐसा कहा कि अब मैं अपनी आंखों से देखना बंद करता हूं, आपकी आंख से देखूंगा? कभी हमने भगवान से ये कहा कि अपने कानों से सुनना बंद करता हूं, आपके कानों से सुनूंगा? अब मैं अपने मुंह से बोलना बंद करता हूं, आपके मुंह से बोलूंगा, अर्थात जैसा आपने कहा है वही बोलूंगा, वही भाषा बोलूंगा। गांधी जी को एक ही शिकायत थी नेहरू से, और उन्होंने आखिरी दम तक कहा था नेहरू से कि नेहरू तुम्हारे और मेरे बीच में ज्यादा फर्क तो नहीं है, पर तुम मेरी भाषा नहीं बोलते हो, तुम मेरी बात तो मानते हो पर मेरी भाषा नहीं बोलते हो। तो नेहरू ने कहा कि आखिर बात क्या है? बोले बात सिर्फ यह है कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेज रहे आए पर अंग्रेजियत चली जाए, और तुम चाहते हो कि अंग्रेज चले जाए अंग्रेजियत रही आए, तुम मेरी भाषा नहीं बोलते हो, मेरी तो सब बात मानते हो। पर यही हम लोगों के साथ में, कि हम लोग भगवान की सब बातें मानते हैं, भगवान की भाषा हमारे मुंह से नहीं निकलती, हमारे मुंह से कोई अनर्गल भाषा निकलती है। क्या सूत्र वचन कहते हैं कि पशु की तरह मौन रह जाने का नाम मौन नहीं है, भगवान के कई अनुसार बोलने का नाम मौन है। कभी आपने सुना कि बोलने का नाम मौन है? हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि जैसा भगवान ने कहा है वही बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, यही मौन है, इससे बड़ा कोई मौन नहीं है। पशु की तरह चुप रह जाने का नाम मौन नहीं है, वो तो कोई भी रह जाता है। तो ऐसा हम समर्पण करें कि अपने मन वचन काय सबको बांध बूंद करके किसी के चरणों में डाल दें, तो फिर देखिए जीवन कैसा होता। एक और बहुत छोटी सी घटना आपको सुनाऊं और बात खत्म करूं। श्रद्धा की बात ऐसी है कि कई बार मुश्किल पड़ती है कि मैं कितना भी समझाऊं, लेकिन वो समझ सकता है जिसने कभी श्रद्धा की हो, जिसने कभी किन्हीं चरणों में अपना माथा रखा हो और अपने जीवन को बदलते हुए देखा हो। उसे फिर किसी से सुनने या कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा विश्वास इस चीज में है कि अगर किन्हीं चरणों में बैठकर हम अपना जीवन बदल सके, चाहे वे भगवान के चरण हो, चाहे वे जिनवाणी माँ के चरण हो, चाहे वे किसी गुरु के चरण हो, किन्हीं चरणों में बैठकर अपने लाइफ स्टाइल को अगर आपने चेंज कर लिया, मानिए आपने सब कुछ कर लिया, भले ही आपको कुछ नहीं आता। और जिस व्यक्ति ने बहुत पोथियां भी पढ़ ली हो, बहुत बढ़िया से पूजाएं भी करी हो, बहुत मुनियों की सेवा भी करी हो और अपने जीवन की स्टाइल चेंज नहीं की हो, अपना वही गंदा सोच और अपनी वही मिथ्या दृष्टि और अपनी वही अनर्गल प्रवृत्ति अगर ये नहीं छोड़ी है तो उसने कुछ नहीं करा है। तीनों चीजें तो हैं, हमारी अपनी प्रवृत्ति, हमारे मन का सोच और हमारी आंख की दृष्टि। एक व्यक्ति को प्रार्थना करने पर भगवान ने दृष्टि दे दी थी। भगवान देते वेते नहीं भैया, लेकिन क्या करें, अपन यही मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या दिक्कत है। भगवान ने दृष्टि दे दी और एक दिन भगवान ने उसको दृष्टि जब मिल गई तो कहां जाते देखा, व्यसन में फंसते देखा उसको। दृष्टि मिल जाने के बाद वो व्यसन सारे व्यसन करने लगा। भगवान को बहुत दुख हुआ। भगवान एक दिन उसको रास्ते मिल गए। ऐसे भगवान होना चाहिए कि भी रास्ते मिल जाए कि क्या कर रहे हो मिस्टर। अपन को ऐसे भगवान मिलते नहीं है, इसलिए अपन को गड़बड़ हो जाती है, अपन निश्चिंत हो जाते हैं कि कोई नहीं देखने वाला, सब अपने मन से करते जाओ। तो उसको मिल गए भगवान और उसका कान पकड़ के कहा कि क्या मैंने तेरे लिए इसीलिए आंख दी थी, ते जो है व्यसन में फंस गया। तो रोने लगा कि गलती हो गई, लेकिन उलाहना भी दे दिया भगवान को कि भगवान आंख तो दी पर दृष्टि और दे देते तो ठीक ठीक देखता। हम सबके पास आंख है, हमारे कर्मों के वजह से हमको मिली है, भगवान ने नहीं दी चलो, लेकिन कर्मों के वजह से मिली हुई इंद्रिय और मन, इन सब का क्या उपयोग करना, इससे कैसे देखना, ये तो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। और ये बेदृष्टि किस पे निर्भर करती, हमारे समर्पण पर निष्ठर, जिसके प्रति हम समर्पित हैं, मानिएगा हमारी दृष्टि वैसे ही हो जाएगी। बेईमान के प्रति समर्पित व्यक्ति की आंख हमेशा बेईमानी देखेगी, ईमानदारी के प्रति समर्पित व्यक्ति की आंख हमेशा दूसरे की ईमानदारी देखेगी, लाख बेईमानियां उसके भीतर हों। अगर आपकी आंख कहीं बेईमानी देखती है तो बाहर बेईमानी बाद में होगी, आपके भीतर बेईमान आप पहले हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये कभी अपने जीवन में करके देखना, अनुभव करके देखना। आप अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पित हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, हर जगह एक ही चीज दिखाई पड़ेगी। और जहां कोई व्यक्ति सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पित मिल जाएगा, आप उसको गले लगा लेंगे, आप उसके दोष नहीं देखेंगे। और इसी का नाम तो उपगोहन है कि दिख भी जाए तो कहेंगे नहीं, और अगर कहने का मन हो तो उसी से कह देंगे, दूसरे से जाके इधर उधर बैठ के नहीं कहेंगे कि उनकी फलाने की जगह गलती देख वे में आई, उसी से जाने। इतना साहस उसके भीतर आएगा जिसकी दृष्टि निर्मल है, जो कहीं समर्पित है। और जो कहीं समर्पित नहीं है, उस व्यक्ति का कोई पता नहीं है कि वो कब क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा। हमारे जीवन के साथ यही चीजें हो रही, हमारे पीड़ा का अगर कोई कारण है तो यही, हम समर्पित नहीं है कहीं, छोटे छोटे से संबंधों में हम समर्पित नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमारे जीवन को व्यथित कर देती है। और वात्सल्य और प्रभावना जिसकी दृष्टि निर्मल है उसी के द्वारा होती है, उसी के अंदर वात्सल्य होता है, उसी के द्वारा जीवन में प्रभावना होती है। ये आठों बातें ही तो हैं, हमारे यहां कई हैं, कि श्रद्धा अगर एक बार आ जाए, टोटल एक्सेप्टेशन आ जाए कि हमने सब कुछ स्वीकार करा, जैसा भगवान ने देखने को कहा वैसा देखता हूं, जैसा भगवान ने बोलने को कहा वैसा बोलता हूं, जैसा भगवान ने करने को कहा वैसा करना शुरू करता हूं, अपनी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी है, मैं मानता हूं कि वो कौन करवाता है? वो सिर्फ श्रद्धा और समर्पण करवाता है, इसके अलावा कोई नहीं करवाता। पढ़ना नहीं होने, मैं आपको बाई फोर्स अगर ये कह भी दूं कि आप ऐसा कर लीजिएगा और आपकी मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं है, आप कुछ दिन कर लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि कहां से कहां होते चले गए थे, और जब मानने पड़ी हमें नहीं करने का छू, और आपकी श्रद्धा हो और मैं कुछ नहीं बोलूं, तब भी आप श्रद्धा के मारे यही कहेंगे कि मैं तो सब करूंगा, आप भले ही कहो चाहे मत कहो। बताइए ऐसा है कि नहीं? अगर कहीं आपकी श्रद्धा है तो बिना कहीं आप शुरू कर देंगे, और वरना अगर श्रद्धा नहीं है तो आप कहीं कहे भी शुरू नहीं कर, और कर भी लेंगे तो आपके जीवन में उससे कोई आनंद नहीं आने वाला। इसलिए कहता हूं कि कहीं अपने को समर्पित करके देखिएगा। एक बहुत छोटी सी घटना, एक व्यक्ति ने अपने जीवन को पूरा भगवान के जिम्मे समर्पित कर दिया था और अच्छे बुरे का सारा झगड़ा मिटा दिया था उसने। क्या हुआ कि उसका एक बेटा था और उसके एक घोड़ा था, और वो व्यक्ति खुद बूढ़ा हो गया था। बस आखिरी कहानी, और फिर मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। एक ही उसके बेटा था, एक उसके घोड़ा था, और वो खुद व्यक्ति बूढ़ा हो गया था। कहानी इतनी सी है। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसी के राजा ने उस राज्य पर आक्रमण किया जिस राज्य में वो बूढ़ा रहता था। अब घोषणा की गई कि सबको अपना अपना बेटा घर में से एक तो देना पड़ेगा। इसने भी मन बना लिया कि अब एक ही है, दे देंगे। लेकिन इतने में क्या हुआ कि उसका घोड़ा भाग गया। उसने सोचा था कि घोड़ा पास में रहेगा, बेटे को भेज भी देंगे तो घोड़े के साथ ही रहना पर्याप्त होगा, कोई सहारा तो रहेगा। पर घोड़ा भाग गया। सब लोग, गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति बड़ी आत्मीयता रहती क्योंकि थोड़े से लोग हैं, तो फौरन सब लोग आए। उनने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तुम तो मन बना रहे थे कि अपने बेटे को भेजने का, और अब तो जो है तुम्हारा घोड़ा चला गया, आप क्या करोगे? तो उसने कहा कि क्या करना है, चला गया चला गया। तो लोगों ने कहा बहुत बुरा हुआ। उसने कहा यह मत कहो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये मत कहो, बस इतना ही कहो कि घोड़ा था और अब नहीं है। कोई कमेंट, कोई रिमार्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो लोगों ने कहा कि अजीब आदमी है, हम तो इसको सिंपैथी, सहानुभूति देने आए थे, और ये कह रहा है कि कुछ मत कहो कि बुरा हुआ कि अच्छा हुआ, बस इतना कहो कि घोड़ा था और अब नहीं है। चले गए सब लोग। 8-10 दिन के बाद अचानक जब ये सुबह सुबह बूढ़ा उठा तो उसने देखा कि अस्तबल में 8 घोड़े आ गए। वो पुराना वाला घोड़ा तो आ ही गया, उसके साथ 7 और घोड़े आ गए। सारे दूर तक खबर फैल गई कि बूढ़े का घोड़ा वापस लौट आया और अपने साथ 7 और घोड़े लेके आया। सब लोग फिर पहुंच गए, बधाइयां देने पहुंच गए, शुभकामनाएं देने पहुंच गए कि अरे बहुत अच्छा हुआ। फिर बूढ़े ने धीरे से कहा कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये कुछ मत कहो, ये कहो कि एक घोड़ा था, भाग गया था, वापस लौट आया, 7 और आ गए हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं। लोगों ने कहा कि इसका माथा फैल गया है क्या? अरे अच्छे को अच्छा भी नहीं कह रहा, उस समय बुरे को बुरा नहीं कह रहा था, ठीक है अब तो अच्छा हुआ अच्छा कहना चाहिए, और ये कह रहे कि अच्छा बुरा कुछ मत कहो। हम लोगों के साथ देखो कितनी मुश्किल है, जरा सी हमारे मन की बात हो गई अच्छा हो, जरा सी हमारे मन की बात में भी बड़ा बुरा हो गया। सारी दुनिया में अच्छा होता रहे तो सब भूल जाएंगे हम, हमारे प्रति जरा सा बुरा हो गया हमने सब दुनिया बुराई हो गई, और हमारे प्रति अच्छा हो गया सब अच्छा हो गया। और वो कह रहा है कि अच्छा बुरा कुछ मत कहो, जो हुआ है उसे कहो ना, उसे स्वीकार कर लो। कल मैंने स्वीकार कर लिया था, घोड़ा चला गया था, मैंने ना अच्छा कहा था ना बुरा कहा था, आज आ गया है, मैं स्वीकार करता हूं कि आ गया है, ना अच्छा है ना बुरा है। अगर मैं स्वीकार कर लूं कि अच्छा है तो कल के दिन मुझे स्वीकार करना पड़ेगा बुरा है,
और अगर मैं बुरा स्वीकार करता हूं तो फिर मुझे अच्छा स्वीकार, मैं अच्छा बुरा कुछ स्वीकार नहीं करता, मैं जो हूं वैसा स्वीकार करता हूं। अब क्या हुआ कि सब लड़के तो जा ही रहे थे और इसके बेटे को भी जाने की तैयारी पूरी हो गई। जिस दिन जाना था उसी दिन अचानक क्या हुआ कि वो जो नए घोड़े आए थे वो ट्रेन तो थे नहीं। बेटा जो है उन घोड़ों पर सवार होकर के गया था घूमने के लिए, वापस लौटा तो टांग टूट गई उसकी। अब जब वहां से सैनिक आए और उन्होंने कहा कि तुम अपने बेटे को दो सेना में भर्ती होने के लिए, तो उसने कहा वो है, अब वो है तो वो तो पैर उसका टूट गया, अब तो जाने लायक नहीं है। तो आगे बढ़ गए, सबके घरों से बेटे गए, लेकिन इसका वाला बेटा, इसका बेटा नहीं गया। क्यों? उसका पैर टूटा था। सब लोग शाम को उदास इसके दरवाजे पर आए कि देखो कितना अच्छा हुआ। सुबह जो लोग कह रहे थे कि बेटे का पैर टूट गया और कह रहे थे कि अच्छा नहीं हुआ, वे लोग शाम को आए और बोले कितना अच्छा हुआ, कम से कम पैर टूटे ही है ना, वहां चला जाता तो कोई पूरे मर जाता, लौट के नहीं आता, तो बहुत अच्छा हुआ। उसने फिर यही कहा कि सिर्फ इतना कहो, वे आठ घोड़े कल आए थे, वे आठ घोड़े अच्छे थे और आज उन आठ घोड़ों में से किसी ने बेटे को गिरा दिया तो बुरा हो गया, और वो बुरा अब अच्छा हो गया क्योंकि बेटा वहां सेना में जाने से रुक गया। वो कहता है कि मैंने किसी भी स्थिति में अच्छा और बुरा जानी नहीं, मैंने तो जो हुआ उसे स्वीकार कर दिया। एक बार आप समर्पित होकर देखिएगा, फिर जो होता है वो अच्छा और बुरा नहीं होता, जो होने योग होता है वही होता है, पर हम उससे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं तो कोई दुख नहीं है। ये संसार के सुख और दुख इन्हीं चीजों में, हमारी मान्यताओं में, जो हम मान लेते हैं, जो हमारा मन कह देता है, और एक बार अगर हम उस मन को बांध बूंद के किन्हीं चरणों में समर्पित कर देवें, फिर क्या अच्छा और क्या बुरा, सारी चीज ओपिनियन पे डिपेंड करती है, सारी चीज हमारी दृष्टि पर निर्भर करती है, और वो दृष्टि तो हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र से मिल रही है, फिर हमें अपनी तरफ से कुछ करने नहीं है। एक व्यक्ति मुझे भेजने के लिए जाता है और भेज करके वापस लौटता है और एक बस पकड़ता है और बस पर से हाथ फिसलता है और नीचे गिर जाता है, नीचे गिरता है और बहुत उसको लग जाती है, तो क्या सोचता है कि ने महाराज के संगे आए होते उन्हें जा लगती, दूसरी गाड़ी पकड़ के वापस चला जाता है और अब जिंदगी में कौन महाराज आवे भेज भी नहीं जाने। एक दृष्टिकोण। दूसरा, एक व्यक्ति आता है मुझे भेज करके बहुत दूर तक, फिर वापस लौटता है, गाड़ी में बैठता है, उसके साथ भी वही होता है और थोड़ा फिसल जाता, उसको लग जाती, दूसरी गाड़ी से फौरन मेरे पास आता है, कहता है कि आपके संगे हते सो इतना ही लग के रह गई, का पता को पूरे ही से चले जाते अगर घरे होते तो। अब मुझे बताओ कि क्या सही है क्या गलत है, दोनों को लगी हुई है, हमारे दृष्टिकोण पर। हम जहां समर्पित हैं वहां अगर हमें कुछ हो भी गया है तो हम कहते कुछ नहीं हुआ, इससे भी ज्यादा हो सकता था, और जो हमारा विश्वास नहीं है, जहां हमारा समर्पण नहीं है, वहां जरा सी चीज भी हो जाए तो हम उसी चीज को भी छोड़ने तैयार हो जाते हैं। बस इतना ही खेल है भैया संसार का। एक बार कभी जो अपने को ये सब जीवन में मिला है उसके प्रति मिल तो गया है सच्चे देवगुरु का शानिस्त्र, लेकिन इसके प्रति समर्पित होकर देखो, एक दिन को होकर देखो, और एक दिन का वो आनंद अगर अच्छा लगता है तो दूसरे दिन तो अपने पास अपने हाथ में है, किसी से पूछने थोड़ी जाना है। एक दिन जनवाणी की एक बात मान के, एक दिन गुरुओं की एक बात मान के, एक दिन भगवान की एक बात मान करके देखो, दिन भर का अनुभव देखो, और अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाओ, नहीं अच्छा लगे तो जो करते हो वो करते रहो। कभी अगर अपने आप ही जीवन में परिवर्तन आए तो लाने की कोशिश करना चाहिए। मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि हम सब अपने जीवन में इस तरह के सारे विचार करेंगे और खुद विचार करके अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। मैं इसी भावना के साथ, मेरे साथ नमोकार करें क्या? मेरे साथ नमोकार करें कि हम सबका मन पवित्र हो, हम समर्पित हो सकें, पंच परमेश्वरी के प्रति समर्पण ही हमें संसार से पार करें।
Oh.
नमो अरिहंताडम।
बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज,
भानु सेवकानी है चहो द्रव्य जा
पर पहचानवे को परमा प्रामाणिक है, अनुभव बतावे को जीवों के जतावे को, तब न सतावे को भव्य और आनिक है, जागा तागा तारवे को पार के उतारवे को सुख वे स्तारवे को ये ही दिल वाणी है। सुवाणी मस्तक नमो सुवाणी।